नमस्ते सरस्वती ने भगवान प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अर्चतादेशतारिणे नमस्ते सरस्वती ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री वासादि गौर Rama, 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 Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Gaur, 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 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari, Jaya Yashoda Nandana Prajaja Niranjana, Yashoda Nandana Prajaja Niranjana, Yamuna Tira Vanajari, Yamuna Tira Vanajari, Jaya Radha Madhava Tujha Bihari, Radha Tujha Bihari, Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha, Jaya Radha Giridhari Radha, Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Radha Deva. Jaya Gauranika, Jaya Gauranika, Jaya Gauranika, Jaya Gauranika, Sachinandana, Jai 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 Sachinandana, Gaura Hari, Jai Sachinandana, Gaura Hari, Jai Prabhupada, 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 Shri Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shri Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Dekha Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Prakacharya Shastotara Satishtwangri Abhay Charnarvinda Bhaktyadan Swami Srila Prabhupada ki. His gone Bibiti B.I. Founder Acharya Savior of the whole world. Most merciful A.C. Bhaktyadan Swami Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahansa Prabhupada Shtashtotarasat His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tridandi Goswami Maharaj Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda Ki Prem Se Goja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrindaki Shri Radha Giridhari Gop Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Shri Radha Giridhari Ji Ki Jagannath Baldev Subhadra Maya Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Granth Raj Srimad Bhagavatam Mahapuran Ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Savior of the whole world, the most merciful is Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Sato Jaya Mudirai. Nashta Prayeshu Abhadreshu. Bhagavate Uttama Sloke. Bhakti Rava Bhakti Naishtake. Granth Raj Srimad Bhagavatam Mahapuran Skanda Das Adhyay Bharah, जिसका शीर्षक है अगासुर का वध, श्लोक श्रृंखला 39। सक्रे Yat Anga Pratima Anta Ahita Mana Mai Bhagvatin. Dado Gatin Saha Eva Nitya Atma Sukha Anubhuti Abhivyudas Maya Antaha Gataha He Kim Punaha सकृदयदङ्ग प्रतिमान्तरायितः सकृदयदङ्ग प्रतिमान्तरायितः मनोमयि भागवते ददो गते मनोमयि भागवते ददो गते सैव नित्यात्म सुख अनुभूति अधि सैव नित्यात्म सुख अनुभूति अधि द्युदासमयो अन्तर्गतो हि किं पुनः द्युदासमयो अन्तर्गतो हि किं पुनः सकृदयद् अङ्ग प्रतिमान्तरहिता मनोमयि भागवतीं ददो गतिम् स एव नित्यात्मसुखानुभूति अधि द्युदास्तमयो अन्तर्गतो हि किं पुनः द्युदास्तमयो अन्तर्गतो हि किं पुनः
Mano
વૈષ્ણવી માતાજી जिसका अंग प्रतिमा भगवान का स्वरूप वैसे रूप अनेक हैं, किंतु कृष्ण आदि रूप हैं। अंतः आहित अपने अंतर में रखते हुए मनः मयी बलपूर्वक उसका चिंतन करते हुए भागवती जो भगवान की भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। ददो कृष्ण ने प्रदान किया गति सर्वोत्तम स्थान सह वे भगवान एव निसंदेह नित्य सदैव आत्मा सारे जीवों का सुख अनुभूति उनके चिंतन मात्र से दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अभी व्युदस्मय क्योंकि वे सारे मोह को दूर कर देते हैं। अंतःगत हृदय के भीतर सदैव स्थित रहने वाले निसंदेह किं पुनः क्या कहा जाए।
जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरनिथाय की। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य बड़ा सुंदर है, अनुवाद भी बड़ा सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये मेरा दिव्य एक्सटेसी, इट्स माई ट्रांसडेंटल एक्सटेसी, प्रभुपाद जी के दिव्य अनुभूति है। यह तात्पर्य में अनेक रोचक बात हमें प्राप्त होती है, इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। पहले अनुवाद। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन को भगवान के स्वरूप या मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हरि बोल। कितना सुंदर बात है। जिस प्रकार अगासुर को विषय प्राप्त हुआ है तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों को ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं, और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। अब सुनिए तात्पर्य बड़े ध्यान से। ये तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी भक्ति का, भगवान का बड़ा महिमा बताते हैं, जो बहुत जरूरी है बार बार सुनकर अपने हृदय में भक्ति के प्रति और विश्वास जागृत कराने के लिए, पोषण कराने के लिए। यहां भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बतलाई गई है। यत पाद पंकज पालस विलास भक्तिया। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय के 39 श्लोक में बताया जाता है, कृष्ण का चिंतन करने मात्र से उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। कितना सुंदर बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण का चिंतन करने से। और अच्छे अच्छे बातें आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बड़ा तात्पर्य जब आते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी भाव विभोर होकर लिखते हैं तो भक्तगण भी भाव विभोर हो जाते हैं, मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। हमारे प्रभु जी तो मूर्छित ही हो गए। ठीक है, जो भी है, पर वो भाव भी क्या भाव है, ऐसे अक्रूर जी कहते हैं, जिससे हमारा सेवा में बाधा आ जाए। कृष्ण का चामर डुलाते डुलाते वे भाव विभोर होके नाच रहे थे, तब कहा कि सेवा में ये बहुत बाधा ले आ रहा है, इसलिए मैं भाव विभोर नहीं होना चाहता, इसलिए कृपा करके अक्रूर जी का आचार्य समझ के श्रवण सेवा में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण। और अच्छे अच्छे बातें सुने। लंबा तात्पर्य है, मुझे लगता है आज का तात्पर्य का ही आनंद लेते हैं हम लोग और जीवन इसी में सार्थक हो। ऐसे बातें आपको सुनने में मिलेंगे, हो सकता है हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। यह भी बतलाया गया है कि कृष्ण के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान भक्त हृदय स्थित। अगासुर के बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि वह भक्त न था। इसका उत्तर यह है कि उसने क्षण भर भक्ति पूर्वक कृष्ण का चिंतन किया। भक्त्या अहम् एक्या ग्राह्य, बिना भक्ति के कोई कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छी बात कहते हैं। फिर बताते हैं, अगर कोई कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, हाँ ये वाक्य एक बार सुन लो, बिना भक्ति के कोई कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई कृष्ण का चिंतन करता है तो उसमें निश्चित रूप से भक्ति होती है। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर भक्ति है तो चिंतन होगा, अगर चिंतन है तो भक्ति जरूर होना चाहिए, नहीं तो चिंतन नहीं होगा। तो अगासुर ने भी चिंतन किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसको भक्ति था। और देखिए यहां बताते हैं, यद्यपि अगासुर का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था, किंतु शंबर उसने कृष्ण का चिंतन भक्ति पूर्वक किया और कृष्ण तथा उनके संगियों ने अगासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी, किंतु कृष्ण ने उसे माता का आधार किया, क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था। स्वल्पम अस्ति अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक। विशेषताया जब कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और जो कोई व्यक्ति कृष्ण के इन विविध अवतारों का रामादि मूर्तिषु कला नियमे चिंतन करता है, विशेषतया उसके आदि रूप कृष्ण का, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अनेक दृष्टांत है जिनमें से अगासुर भी है, जिसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। अतएव विधि यह है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वृता। भगवद गीता 90 अध्याय के 14वें नंबर श्लोक। अतः भक्त लोग सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। जब हम कृष्ण नारायण विष्णु चैतन्य कृष्ण बलराम तथा श्याम सुंदर का उल्लेख करते हैं, तो हम उनके सारे अवतारों यथा कृष्ण गोविंद नारायण में पुनः पढ़ता हूं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। जब हम कृष्ण का उल्लेख करते हैं तो हम उनके सारे अवतारों तथा कृष्ण गोविंद नारायण विष्णु चैतन्य कृष्ण बलराम तथा श्याम सुंदर का उल्लेख करते हैं। जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है उसे विमुक्ति, जो भगवान के निजी संगी के तौर पर विशेष मुक्ति होती है, प्राप्त होनी चाहिए। भले ही वह वृंदावन में न हो। देखिए और एक बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है उसे विमुक्ति हो, विमुक्ति जो भगवान के निजी संगी के तौर पर विशेष मुक्ति होती है, प्राप्त होनी चाहिए, भले ही वह वृंदावन में ना हो। अगर वृंदावन में भी नहीं है, अगर वो भगवान का चिंतन करता है तो उसे विमुक्ति मिलेगा। कम से कम वैकुंठ लोक में तो हो, यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। श्रील प्रभुपाद जी की एक बार अनुवाद फिर से हम उच्चारण करेंगे, आप मेरे बात साथ में बोलिए। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अगासुर को प्राप्त हुआ तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो भगवान सारे जीवों के दिव्य आनंद के स्रोत हैं, और जो भगवान सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोआवेशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवम्। साद्वैतमसावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़ा उत्साह प्रदान करने वाला सुखदेव गोस्वामी महाराज द्वारा यह परीक्षित महाराज जी को सुनाया जा रहा है यह श्लोक है। साकृत केवल एक बार, केवल एक बार और ज्यादा नहीं, केवल एक बार अगर हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं या भगवान के स्वरूप को देख लेते हैं तो इस श्लोक के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि उनको विमुक्ति विशेष रूप का मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। यह है कृष्ण का कृपा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह है कृष्ण का कृपा। कितने दयालु हैं कृष्ण, यह भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बतलाई गई यहां पे। कितना दयालु कृष्ण है, अगासुर मारने आया था उसे, पर अगासुर को कृष्ण ने एक सारूप्य मुक्ति प्रदान कराया। इन बातों के ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी कभी इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है ये हवे में बातें बतला रहे। भागवत का जब मंगलाचरण प्रारंभ में ही वेदव्यास मुनि भागवत का रचना करते हैं तो बड़े सुंदर बात कहते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं वेदव्यास मुनि कि भागवत का ऐसा महिमा इस मंगलाचरण में कर देते हैं, कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम महामुने कृते किं वा परे ईश्वरे सद्य हृदय आवृदे। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम एक महान ग्रंथ है, महामुने द्वारा वेदव्यास मुनि द्वारा कृत है, वेदव्यास मुनि का ये आखिरी कृत है। वेदव्यास मुनि अपने जीवन में परिपक्व अवस्था में, अपने जीवन के चतुर्थ अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि की कृपा और आज्ञा को लेकर ये लिख के ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर सद्य हृदय आवृदते। ईश्वर जो है तक्षण उसी क्षण उसके हृदय में सद्य सद्य यानी कि उसी वक्त उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। किसके किसके हृदय में, फिर कहते हैं जो भागवत का अध्ययन किया है उसके, जो भागवत को बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण किए उसके, या जिन्होंने भागवत का अनुष्ठान किया उनके। नहीं, कहते हैं कि ईश्वर सद्य हृदय आवृदते अत्र शुश्रूषमे। कहते हैं कि जो भागवत का विधि पालन करने का इच्छा करे या सोचे कि मैं भागवत श्रवण करूंगा, या सोचे कि मैं भागवत का अध्ययन करूंगा, या सोचे कि मैं आगे जाकर इसी प्रकार का भागवत का अनुष्ठान करूंगा, वे भागवत का अनुष्ठान किए नहीं, भागवत का अध्ययन किए नहीं, भागवत का श्रवण भी किए नहीं, वो केवल सोच रहे हैं इतना अच्छा भागवत है मैं इसका आगे जाकर भविष्य में कभी सेवा करूंगा तो कहते हैं कि सदय हृदय आवृदते, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। यह है भागवत और यह है भागवत का महिमा। कहते हैं कि जो सेवा करे उनकी बात तो अलग, सेवा करने का इच्छा भविष्य में करेंगे उनके हृदय में भगवान आ जाएंगे। विश्वास होना चाहिए, फिर हम कहेंगे हमने भागवत का इतना अध्ययन किया है, हमने भागवत का इतना सेवा किया, हमने भागवत का इतना श्रवण किया, तो हमारा क्या अभी भी मन आपके बारे में हम नहीं कहेंगे आप सब वैष्णव वैष्णवी हैं जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में रचे बचे हैं। अरे फिर भी मन इधर उधर हो जाता है इस विषय पर, या ऐसा अगर होता है तो क्या वेदव्यास मुनि गलत हैं? नहीं हो सकते। क्या भागवत के मंगलाचरण में जो बातें बताए हैं वो गलत है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये कोई ग्रंथ जो है ये कोई साधारण व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है। जो चार प्रकार के दोष या टूटी जिसके अंदर हो, ग्रंथों में जो बातें बताई जाते हैं वो सत्य है। हरि नाम का महिमा हम श्रवण करते हैं तो कहते हैं कोई एक बार हरि नाम लेने का इच्छा करे, लिया नहीं, कहीं रथ यात्रा हो रहा है, कहीं नगर संकीर्तन हो रहा है, कोई दूर से कहता है कि मैं भी एक दिन हरि नाम का जप करूंगा या हरि नाम में भाग लूंगा, तो कहते हैं कि तुरंत उसी वक्त ब्रह्मा जी जो है सत्य लोक में उस व्यक्ति के लिए एक आसन तैयार कर देते हैं और अपना थाली तैयार करते हैं जिसमें चामर मोरपंख दिया अगरबत्ती और जल इत्यादि रख देते हैं। और इतना ही नहीं, नरक में नीचे यमराज जी जो है उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि वो अपने सचिव को बुलाते हैं, बोलते हैं चित्रगुप्त इनका फाइल थोड़ा लेकर आओ। तो चित्रगुप्त फाइल लेकर आते हैं, बोलते हैं कि इसके फाइल में तो पूरा पाप ही पाप है। बोलते हैं इसको रद्द कर दो। रद्द कर दो क्यों? तो बोलते हैं ये इच्छा किया कि मैं हरिनाम में भाग लूंगा। ये शास्त्र की बातें हैं, कोई झूठे नहीं है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता, ये सच है। कैसे सच हो सकता है? ठीक है, हम थोड़ा सा इसे समझाने का प्रयास करेंगे। सोच लो कि कोई व्यक्ति हरिनाम में भाग लिया और सोचा कि मैं कल जप करूंगा, पर वह कल कल करते उसका कल आता नहीं है। फिर एक महीने के बाद फिर से हरिनाम देखता है तो वो थोड़ा सा हरिनाम के पीछे पीछे चलता है, हरिनाम कीर्तन में भाग लेता है, फिर भी वो जप नहीं करते हैं। फिर चलते चलते एक दिन मंदिर आ जाता है, मंदिर में भक्तों को कीर्तन करते करते वो भी गलती से नाच लेते हैं, अच्छा लगा उसको, नाच लिया। अभी वो हरिनाम प्रारंभ नहीं किए, जपा प्रारंभ नहीं किए। अब और तीन महीने के बाद जन्माष्टमी के दिन फिर से आ जाते हैं, फिर वहां कोई कहता है आप नजदीक रहते हैं तो रविवार के कार्यक्रम में आया करो। तो रविवार संडे लव फीस्ट में आने के बाद कम से कम अच्छा लग गया, महीने में दो बार तीन बार आ जाते हैं। ऐसा करते करते साल बीत गया, एक साल बीत गया और ब्रह्मा जी ने वहां थाली तैयार कर रहे हैं और यहां यमराज जी उसके फाइल काट रहे हैं। एक साल बीत गया, अब वो व्यक्ति कहता है कि ये क्या है, ये झोला आप लोग करते क्या है इसमें, अभी तक जपा किया नहीं। तो बोलते हैं आप भी जपा कर सकते हैं, इसमें 108 मणि होता है, आप अंगूठा और बड़े उंगली से जप कीजिए और ये जो है इस उंगली को दूर रखिए। तो बोलते हैं अच्छा, तो जपा शुरू करता है, फिर भी कभी कभी भूल जाता है जप करने के लिए, एक माला से शुरू करता है, फिर भी उसका लव फिश चालू रहता है और चार साल के बाद किसी से पूछता है ये दीक्षा का कार्यक्रम क्या होता है, गुरु जी कौन होते हैं, तब वो सोचता है कि क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ, तो बोलता है आपको काउंसिल ज्वाइन करना होगा। काउंसिल में क्या करना होगा, इसके लिए 16 माला जप, मैं तो एक भी माला नहीं किया। फिर 2 साल तक वो 8 माला में अटका रहता है, फिर 6 साल के बाद वो 16 माले में आता है और काउंसिल ज्वाइन कर लेता है, तब जाके वह 10 साल के बाद दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद भी कभी कभी मन में अलग अलग चिंता उसके आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा भक्ति ठीक से हो नहीं रहा है, पर ऐसे ऐसे करते करते और 20 साल चला जाता है और उसका मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, और मृत्यु के समय सारे भक्त उनके निकट आते हैं और भक्तों के संग में वो हरिनाम कीर्तन करते रहता है, और हरिनाम करते करते उनके दोनों पलक बंद हो जाते हैं और आत्मा देह को छोड़कर चला जाता है, और जाते जाते स्वर्ग तप जन हर लोक को पार कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं वेलकम, आइए आपका स्वागत है, आपका मुझे आरती उतारने का मुझे लाभ दीजिए, आप तो भगवत धाम जा ही रहे हो, आपका भाग्य के क्या कहना, प्रभुपाद जी का संगति प्राप्त करके जो सतयुग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करने से चेतना का उन्नति नहीं होता है वो आप 30 साल में कर लिया, और आपके लिए ही मैंने ये प्लेट तैयार किया, अभी अभी ये प्लेट तैयार हुआ, आप विराजमान हो जाइए, सेवा का अवसर दीजिए, और आगे जाकर कहना कि इस छोटे से ब्रह्मांड में एक 400 वाला ब्रह्मा जी है, वो आपके धाम में आने का इच्छा करता है, आपका सिफारिश होगा तो मेरा भी नंबर लगेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनका तैयारी करते हैं। तो 30 साल में हम सोच सकते हैं कि वो दिन कहां जब हमने हरिनाम लेने का इच्छा किया, और आज का दिन जब हम हरिनाम करके अपने धाम जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि साकृत एक बार कोई कृष्ण का दिव्य स्वरूप को राधा गिरधारी जी का दर्शन अच्छी तरह से करे और कहे कि कितना सुंदर राधा गिरधारी जी है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि जरूर कृष्ण उनके मन में प्रविष्ट हो जाएंगे और एक दिन सुनिश्चित रूप में वो विमुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मुक्ति नहीं, विमुक्ति। विमुक्ति का अर्थ होता है भगवान के धाम में भगवान की सेवा प्राप्त करेगा और इस सेवा के माध्यम से परम आनंद को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने के लिए बहुत कुछ है इस श्लोक पर तात्पर्य इतना सुंदर है और ये श्लोक भी इतना सुंदर है, एक एक शब्द पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर समय का पाबंदी है, 9 बज गया है, किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। विश्वास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा पंडित, इतना बड़ा पंडित था कि उनसे सब लोग डरते थे, सभी से तर्क करते थे और तर्क में सबको हराते थे। वह था एक प्रकार से मायावादी, उसका नाम था अभयन। अभयन बौद्ध के पंडित लोग भी, बौद्ध धर्म के पंडित, जैन धर्म के पंडित, वो लोग भी डर के मारे भाग जाते थे उनके नाम सुनकर। एक दिन वो ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते कोई पुराण, ब्रह्मांड पुराण या कोई पुराण पढ़कर वहां पे जगन्नाथ जी का महिमा पढ़ लिया, और जगन्नाथ जी के महिमे में महिमा में वे पढ़े कि जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र करने से मुक्ति मिल जाएगा, विमुक्ति मिल जाएगा, जैसे यहां पे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं। तो वो सोचा कि कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करने से विमुक्ति मिलेगा, यानी कि इतना बड़ा पंडित और शंका कर रहा है। जैसे ही ये विद्वान अभयन नाम का था वो जगन्नाथपुरी आ गया, वो आश्रम में ठहर लिया जहां पे आश्रम होता है निवासी प्रवासी यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए आश्रम, तो वो वहां पे ठहरा था। रात बिता लिए, सोचा कि आज मैं जाऊंगा दर्शन करूंगा। जगन्नाथपुरी का विधि आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो मुख्य पंडा है वो सुबह सुबह प्रातः आता है और जगन्नाथ जी का मंदिर को खोलता है। जैसे ही वे खोलने गए, जगन्नाथ जी का पट जो है खुल नहीं रहा है, और पंडित आए खोलने का प्रयास किया, खुल नहीं रहा है। पूरा दिन बीत गया, जगन्नाथ जी का मंदिर खुल नहीं रहा है, दर्शनार्थी खड़े हैं लाखों की संख्या में, सब चिल्ला रहे जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी द्वार खोलो, नहीं। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में कुछ बातें कहने चाहते हैं तो वो या तो राजा के मन में आते हैं या वहां के जो मुख्य पंडा है उनके मन में आते हैं, तो दोनों के मन में भी आ जाते हैं। तो राजा के मन में आए और वो पंडा के मन में भी, एक अश्रद्धालु पंडित आ गया, वह शक करता है, शंका रखता है कि मेरा दर्शन करने से मुक्ति मिलेगा, इस बात पे वो शंका रखता है। ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता, और वो जब तक रहेगा मेरा दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा, कोई दर्शन नहीं कर पाएगा मेरा, उसको भगाओ यहां से, पुरी से निकाल दो, जगन्नाथ पुरी से निकाल दो, तब जाके मैं आप सबको दर्शन लूंगा। तब वो पंडा और राजा सब गए और कटकटाए, आप ही हो विद्वान अभयन? बोला हाँ ही मैं ही विद्वान अभयन। वो सोचा कि उनका स्वागत होगा, बोला अभी इसी वक्त आप ये जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाओ। तो बोला क्यों? जब तक आप रहोगे जगन्नाथ जी का दर्शन खुलेगा नहीं, पट खुलेगा नहीं। तो वो जो पंडित था वो रोने लगा, बोला कि मैंने भगवान के शास्त्र के इन बातों पे शंका किया, और मैं रोते रोते जगन्नाथ जी से क्षमा याचना किए, माफी मांगे, उनके रोने में इतनी तीव्रता था कि उनके अंदर की जो गलत बातें थे वो सब निकल गया, और वो क्षमा याचना किया, बोला भगवान आपका दर्शन से जरूर मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। और भगवान ने देखा ये भक्त अभी सुधर गया, तो भगवान का पट खुल गया, बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो यह है अश्रद्धालु व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा कथा, उनके बारे में जो श्रद्धा रखते हैं। गणेश आइए स्नान यात्रा के वक्त आप लोग सुनेंगे, गणपति भट्ट नाम का कर्नाटक में एक भक्त था, उनका यह है कि अगर परम शक्ति कोई है, सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, वह अगर है तो वो हाथी के रूप में होगा, क्योंकि हाथी के पास बहुत सारा शक्ति है। वह ग्रंथों को पढ़ पढ़ के इतना विश्वास था कि वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ के यह पढ़ लिया कि अगर जगन्नाथपुरी में हम जाएंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमें मुक्ति मिलेगा। तो ये सुन लिया तो बहुत खुश हो गया। अब कहा कि क्या करना, इस कलयुग में इसी जीवन में मुझे मुक्ति मिलेगा, विमुक्ति मिलेगा, तो मैं अब परिवार और परिवार के सारे जंजाल को छोड़ देता हूं, और सच में सब कुछ छोड़ के जगन्नाथपुरी के, और तेज गति से चल के आ रहे, उस वक्त ट्रेन फ्लाइट सब नहीं था, तेज गति में चल के आ रहे, और आते आते लोगों को मिल रहा था, भक्तों को आते आते देख रहे थे, क्या आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, क्या आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उनका विश्वास देखिए, ये विश्वास को समझने का प्रयास कीजिए, क्या आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, भक्तों ने कहा हाँ हाँ, हम वो परम दयालु कृपालु जो भक्तों का वांछा पूर्ण करने वाले कल्पतरु भगवान है, उनका दर्शन किया। तब वो डर गया, उनका डर क्या था, अगर इन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया है तो इनका मुक्ति क्यों नहीं हुआ, वापस कैसे आ रहे हैं, इनको तो भगवत धाम जाना चाहिए, जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन किया वैसे इनको भगवत धाम जाना चाहिए। सोच रहे थे कि कैसे ये लोग सबसे पूछ रहे क्या आपने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, सब कहे हाँ हाँ हम जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बहुत सुंदर आज क्योंकि आज स्नान यात्रा था तो बहुत सुंदर भगवान का दर्शन हुआ। तो वो सोच रहे थे अगर जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया तो वापस कैसे आ रहे, उनको तो भगवतधाम जाना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। क्या विश्वास था उनका, क्या विश्वास है उनका, यह विश्वास को इस विश्वास इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर लाना चाहिए। चलते चलते सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। और जैसे ही वो जगन्नाथ जी का दर्शन किए, स्नान यात्रा का दिन था तो जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो देखा जगन्नाथ जी के बड़े बड़े आंख है, जगन्नाथ जी के दो हाथ है और वे ऐसे स्नान कर रहे हैं। तो तुरंत कहा कि ये परम शक्ति नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अगर होगा तो हाथी के स्वरूप का होगा। और वापस जाने वाले थे। अब देखिए इतना विश्वास अगर किसी के हृदय में होगा तो भगवान भी उस विश्वास को जरूर पूरा करेंगे। तब भगवान क्या किए, तुरंत एक ब्राह्मण का रूप लिए। वो दुखी होकर जा रहे थे, गणेश गणपति भट्ट जो है दुखी होकर जा रहे थे, तब भगवान सामने से आए, बोले गणपति भट्ट आप जा रहे हो? बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं सोचा अगर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भगवान है तो भगवान हाथी जैसे होगा। तो बोला भगवान हाथी जैसे नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। और अगर भगवान का दर्शन होने से, जगन्नाथ जी का दर्शन होने से शास्त्र में लिखा है मुक्ति होता है तो ये लोग वापस कैसे आ रहे, दो प्रश्न पूछे। तब वो ब्राह्मण हंसे, देखिए भगवान दयालु है, भगवान इनको मुक्ति इसलिए नहीं दिया, भगवान दयालु है, सबके इच्छा पूरा करते हैं। तो ये जितने भी श्रोतागण आए थे, यात्री आए थे, ये जगन्नाथ जी का दर्शन किए और जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए कि हम और अच्छा भक्ति करें, तो उनको और अच्छा भक्ति करने के लिए भगवान समय दे रहे हैं। किसी ने मांगा कि हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, तो उन इच्छा को भी पूरा भगवान करते। भगवान कैसे है, भक्त वांछा कल्पतरु है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनको तुरंत मुक्ति नहीं दिया, उनको जीने का और मौका दिया। ये हो गया पहला एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा कहा कि अगर सच में हम कहेंगे कि भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर मुक्ति हो जाएगा, इसी जीवन में हो जाएगा। तो ये भी बतला दिए। अब दूसरा प्रश्न कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो गणपति जैसे क्यों नहीं है, गणेश जैसे, हाथी जैसे क्यों नहीं है? तब कहा कि ब्राह्मण ने कहा आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, अभी वापस आइए, आप देखो वो परम शक्तिमान भगवान जो है वो हाथी जैसा ही है। और जगन्नाथ जी ने क्या किया, वो पंडा हेड पुजारी और राजा के मन में गया और कहा कि अभी इसी वक्त मुझे एक गज का, हाथी का वेश लगाओ, मेरा एक परम भक्त गणपति भक्त वो मुझे हाथी के रूप में देखना चाहता है। और तुरंत सारे पुजारी मिलकर एक सुंदर गज का, गणेश का रूप जगन्नाथ जी को देते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग यहाँ पे भी जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा के दिन एक विशेष रूप देते हैं, कौन सा, गज रूप, गणेश का रूप। हाँ, तो उसी प्रकार से बलराम जी और गणेश जी जब हाथी के रूप में वो देखे, उनके आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, वो गदगद होके नाचने लगे, रोने लगे और गाने लगे, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो एक तरफ वो अभक्त जिसके अंदर अश्रद्धालु था उसको जगन्नाथ जी ने दर्शन देने से मना कर दिया, और दूसरे तरफ जो श्रद्धालु भक्त था उनको जगन्नाथ जी ने हाथी का रूप का दर्शन कराया। यह विश्वास, इन बातों में विश्वास रखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने जो कहा है बहुत ये वास्तव में सच है। दूसरे शब्दों में अगर कोई एक बार भी हरिनाम या भगवान का, भागवत का सेवा या भगवान का स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो उसको जरूर मुक्ति विमुक्ति प्राप्त होगा। कब और कैसे होगा वो हमारे समझ के बाहर है, वो भगवान का प्रॉब्लम है। शास्त्र में अगर लिखा है तो शास्त्र की वाणी को सच करना वो उनका है, बाकी ये सच होगा होगा और जरूर सच होगा। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी की, गौर हरि प्रेमानंदे।